बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल के पुराना नियम में पाए जाने वाली पुस्तक पहला राजा का बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इससे आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को इन अध्ययनों से पाते जाइए और बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम सत्य वचन में।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं, विशेष करके हमारे उन नए श्रोता मित्रों का जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, पुराने नियम की पुस्तक पहला राजा और उसके 16 अध्याय से। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि उत्तरी राज्य में यरोबाम के बाद उसका पुत्र नादाब राजा बना, परंतु बाशा ने गोष्ठी करके उसे घात किया और स्वयं राजा बन बैठा और 24 वर्ष तक राज्य करके उसकी भी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र एला राजा बना और दो ही वर्ष में उसके एक प्रधान जिम्री ने उसे नशे की दशा में मार डाला। जिम्री ने सिर्फ 7 दिन ही राज्य किया, परंतु प्रजा ने ओमरी का राज्याभिषेक किया तो जिम्री ने पलिश्ती राजभवन में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। ओमरी का एक प्रतिद्वंदी था तिबनी, परंतु ओमरी के साथी उस पर प्रबल हुए और वह मारा गया। ओमरी के बाद उसका पुत्र आहाब सबसे अधिक दुष्ट राजा हुआ और उसने महादुष्ट स्त्री इजेबेल से विवाह किया। मित्रों, यह था अब तक का इसराइल का इतिहास। अब यहूदा में रहुबियाम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अबियाम, उसके बाद उसका पुत्र आसा एक धर्मी राजा हुआ। मित्रों, अब एक बार इसराइल में आहाब और उसकी पत्नी इजेबेल के कुकर्मों के बारे में सुनिए। आप मेरे साथ निकालिए पहले राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय और उसके 31 पद। 16 अध्याय उसके 31 पद लिखा है, उसने तो नवात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा इतबाल की बेटी इजेबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि आहाब तो दुष्ट था ही, उसकी पत्नी उससे 2 कदम आगे थी। उसने अपने पति की आधार्मिकता को और अधिक बढ़ाया। दुष्टता में वह अपने पति के बराबर का योगदान देती थी। आहाब, जिसे सोच भी नहीं सकता था, वह इजेबेल कर दिखाती थी। दुष्टता में उसके जोड़ का कोई भी नहीं था। मित्रों, वह एक अधर्मी स्त्री थी। आहाब और इजेबेल की जोड़ी दुष्टता में अद्वितीय थी। आप विश्वास रखें कि श्री एवं श्रीमती हमान दुष्ट थे। हेरोदेस और उसकी पत्नी भी दुष्टता में कम नहीं थे। स्पेन का फिलिप प्रथम और खूनी मेरी भी एक उचित जोड़ी थे। इतिहास में ये 4 दंपति कुख्यात हैं। अनेक दंपति भी रहे हैं जहां दुष्टता में पत्नी की भूमिका अधिक प्रभावी रही है। उदाहरण स्वरूप, कैथरीन ने मदीसी और फ्रांस का हेनरी द्वितीय और अल्फोंसो मैकबेथ और उसकी पत्नी लुइस 15 और मारी अंतोइनेते फ्रांसीसी और आज के युग में जूलियस और एथेल रोसेनबर्ग देशभ इतिहास में दुष्टता के लिए कुख्यात हैं, परंतु आहाब और इजेबेल की तुलना में ये कहीं नहीं है। मित्रों, उनका नाम तो दुष्टों की सूची पर सबसे ऊपर है। इजेबेल का पिता एक राजा एवं बाल का पुजारी था। उसने अपने भाई की हत्या कर दी थी। यहाँ रोचक बात यह है कि इजेबेल का अर्थ है अविवाहित या सहवास रहित। इसका अर्थ यह हुआ कि आहाब और इजेबेल के विवाह में प्रेम या रोमांस नहीं था। वह एक सच्चा विवाह नहीं, विवाह का संस्कार मात्र था। स्पष्ट है कि इन दोनों का प्रेम मिलन कभी भी नहीं हुआ। वह एक पौरुषधारी स्त्री थी जिसमें असीम बुद्धि और अधर्म का मनोवेग था। मित्रों, वह हठी थी और प्रबल व्यक्तित्व रखती थी, परंतु उसमें विवेक नहीं था। वह संवेदना से रहित कठोर स्त्री थी। वह सिद्धांतों से रहित इतिहास की महादुष्ट स्त्री थी जिसका जोड़ नहीं था। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु ने थुआतीरा को संदेश दिया। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 2:20 में, मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाएगी, वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। इजेबेल अपनी इच्छा पर अड़ी रहने वाली और मनमानी करने वाली स्त्री थी। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने थुआतीरा की कलीसिया को यह संदेश भेजा क्योंकि उस युग में विश्वासियों में परस्पर प्रेम की कमी थी। यह इजेबेल का स्वभाव था। इजेबेल और आहाब में परस्पर मेल कैसे बना रहा? मैं वर्षों युवाओं की सभा में बुलाया गया हूं और वहां मैंने बड़ी रोचक बात देखी है। और दो विपरीत स्वभाव में लड़का लड़की साथ साथ घूमने जा रहे हैं, प्रायः ऐसा ही होता है। और आहाब एवं इजेबेल ऐसे ही थे। इस युग में एक और बात हुई जिससे प्रकट होता है कि वह युग कैसा अनिष्ठा कर और निंदात्मक था। आइए हम पढ़े पहले राजाओं की पुस्तक 16:32-34 में, और उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और आहाब ने एक अशेरा भी बनाया। वरन उसने उन सब इसराइली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इसराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। उसके दिनों में बेतेलवासी हीएल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अविराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका लहुरा पुत्र सगूब मर गया। और यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। मेरे मित्रों, यरीहो के विध्वंस के समय यहोशू ने कहा था कि इस नगर के पुनः निर्माण करने वाले पर श्राप है। यहोशू की पुस्तक 6:26 में हम पढ़ते हैं, और वह नगर आहाब एवं इजेबेल के समय तक वीरान ही था। उसके दिनों में बेतेलवासी हीएल यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नेव डाली तब उसका जेठा पुत्र अविराम मर गया, और जब उसने फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। मेरे मित्रों, हम ध्यान दें कि यहाँ पर बाल देवता के बारे में कहा गया है। यह एक देवता है जिसकी उपासना अन्य जाति के लोग करते थे। मित्रों, यहाँ पर 16 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को 17 से जारी रखेंगे। 17 में हम पाते हैं कि एलिया की भविष्यवाणी के 3 अकाल वर्ष, आहाब और इजेबेल का राज करने के समय परमेश्वर का अपना भक्त भी वहां होना आवश्यक था। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें उनके विरुद्ध खड़े होने का साहस हो, यह व्यक्ति था एलिया। धर्मशास्त्र का एक महापुरुष, और अति संभव है कि वह अंतिम दिनों में गवाह बनकर आएगा। पूर्वानुमान यही है कि यह वही व्यक्ति है जो आएगा। मेरे मित्रों, हम देखेंगे एलिया द्वारा अकाल की भविष्यवाणी। एलिया का परिचय बड़ा नाटकीय है। वह आहाब और इजेबेल के दरबार में प्रवेश करता है और साहस पूर्वक घोषणा करता है। हम पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 17:1 में लिखा है, और तिशबी एलियाह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मेरे प्रियो, एलियाह आहाब और इजेबेल के दरबार में प्रवेश करके उन्हें मौसम की जानकारी देता है। उसने कहा कि जब तक वह न कहे न वर्षा होगी और न ही ओस गिरेगी। वह नगर से बाहर जा रहा है और अधिक बात करने की उसकी इच्छा नहीं है। तब वह जैसे नाटकीय रूप से प्रकट हुआ था वैसे ही वह चला भी गया। मेरे विचार में आहाब और इजेबेल अवाक रह गए होंगे क्योंकि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई उनके सामने आकर ऐसी बात कहने का साहस करेगा। उन्हें जानकारी मिलेगी कि एलिया में स्पष्टवादिता का स्वभाव था। आप उसे एक कठोर व्यक्ति समझ रहे होंगे, वह वास्तव में था भी। मेरे मित्रों, यहाँ उसके बारे में एक बात और है। परमेश्वर ने उसे प्रशिक्षण देना आवश्यक समझा। परमेश्वर ने सदैव अपने काम में आने वाले को रेगिस्तान में ले जाकर प्रशिक्षण दिया है। आपको स्मरण होगा कि परमेश्वर ने मूसा को भी रेगिस्तान में अर्थात निर्जन प्रदेश में प्रशिक्षण दिया था। परमेश्वर ने अब्राहम के कसदियों के ऊर देश से निकालकर कठिन स्थानों में रखा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ भी परमेश्वर ने ऐसा ही किया था। प्रेरित पौलुस ने भी अरब के रेगिस्तान में 2 वर्ष व्यतीत किए थे। अपने सेवकों को प्रशिक्षण देने की यह परमेश्वर की अपनी रीति है। मेरे मित्रों, अब वह इलिया को भी अवश्य ही प्रशिक्षण हेतु शहर के बाहर ले जाएगा। करीत और सारपत में परमेश्वर इलिया को भोजन देता है। हम पहले राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 2 और 3 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूरब ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने एलिया से कहा कि वह दूर स्थान में करीत के नाले के पास चला जाए जो रेगिस्तान में है। तब हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय के 4 पद में, उसी नाले का पानी तू पिया कर और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। परमेश्वर ने रेगिस्तान में एलिया की सुधि लेने के लिए 2 तरीके अपनाए। एक प्राकृतिक जल स्रोत वहां पर रखा, उसे पानी पीना था इसलिए, और दूसरा तरीका अप्राकृतिक था, कौवे उसे रोटियां लाकर देते थे। एलिया वहां कुछ समय ही रुका क्योंकि नाले का पानी सूखने लगा था। हम पहले राजा की पुस्तक 17 अध्याय उसके 5 से 7 पद में पढ़ते हैं, यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिप गया और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। मेरे मित्रों, एलिया यहाँ जंगल में था। वह प्रतिदिन उस नाले पर जाता था और देखता था कि उसका पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसे वहाँ एक लकड़ी गाड़ देनी थी और उसे पता चलता रहता कि पानी का स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, और इस प्रकार वह अनुमान लगा पाया कि उसकी प्यास या भूख से मृत्यु होने में कितने दिन बचे हैं। गणित के परिकलन द्वारा तो कोई भी जिसमें सामान्य बुद्धि है जान लेगा कि एक विशेष दिन अंत आ जाएगा। मेरे मित्रों, यह आंकड़ों का पाप है। आज कलीसिया का मान आंकड़ों द्वारा ज्ञात किया जाता है। यदि आप किसी कलीसियाई सभा में जाएं और देखें कि दान बहुताय से आया है और नए सदस्य बने हैं और संख्या में वृद्धि हुई है, तो कलीसिया अत्यधिक सफल है, जबकि वह चित्रण सर्वथा अनुचित है। मैंने एक प्रचारक की कहानी सुनी जिसने कलीसियाई सभा में खड़े होकर कहा, हम कोषाध्यक्ष से रिपोर्ट सुने जिससे कि हम कलीसिया की स्थिति को समझ पाए। एक सदस्य ने पूछा, प्रचारक जी, यह स्थिति क्या होता है? प्रचारक ने कहा, स्थिति का अर्थ है अव्यवस्था। यह सच ही है। अनेक कलीसियाओं और संस्थाओं की वास्तविक स्थिति उनकी दुर्गति प्रकट करती है, जबकि आंकड़े उत्साहजनक होते हैं। मेरे प्रियो, अब इलिया को अनुमान हो गया था कि उसका मरण दिन कब होगा। उसने संभवतः गणित के आधार पर गिना होगा, परंतु गणित के ये शीतल आंकड़े आत्मिक आग का लेखा नहीं रखते जो वहां है। आप कलीसिया की स्थिति को बैंक विवरण स्वरूप नहीं दर्शा सकते हैं। आप इसे कंप्यूटर द्वारा भी नहीं नाप सकते हैं। यहां तक कि आत्मिक जागृति भी आंकड़ों से नहीं गिनी जा सकती है। मेरे मित्रों, एलिया ने उस काम को होते हुए, पानी को कम होते हुए, पानी से एक आत्मिक पाठ सीखा। उसने देखा कि उसका जीवन एक सूखा हुआ नाला है। वह स्वयं में कुछ भी नहीं है, वह मात्र एक नाला, एक प्रवाह मार्ग है जिसके द्वारा जीवन जल प्रवाहित हो सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 13 और 14 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मेरे मित्रों, यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष का कारण बनाए, तो हम इसका अर्थ नहीं समझते हैं। इसका अर्थ है कि आप एक सूखा नाला है और आप में जीवन का जल नहीं है, परंतु जब जीवन का जल परमेश्वर का वचन आप में प्रवाहित होने लगता है, तब आप आशीष का प्रवाह मार्ग बन जाते हैं। एलिया को यह सीखना पड़ा। पहला कुरिन्थियुस की कलीसिया में लिखे गए प्रथम पत्र में पौलुस कहता है 1 अध्याय के 27 पद में, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के दुर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर एलिया से कह रहा था, तू हृष्ट पृष्ट बलशाली कठोर मनुष्य नहीं है, तू उस सूखे नाले से अधिक कुछ भी नहीं है। जब तक जीवन जल तुझसे प्रभावित नहीं होगा, तुझ में सामर्थ्य नहीं आएगा। मेरे प्रियो, हार्टसन टेलर के बारे में कहा जाता है कि जब वह अपनी सेवा में युवा प्रचारकों को तैयार कर रहा था, तब वह एक ही बात पर बल देता था, स्मरण रखो कि जब आप लोग यहाँ आते हैं तब आप कुछ नहीं हैं। आपके द्वारा परमेश्वर क्या करता है और क्या करेगा, केवल वही किसी काम का होगा। एक युवा प्रचारक ने कहा, मेरे लिए यह विश्वास करना अत्यधिक कठिन है कि मैं कुछ नहीं हूँ। हर्सन टेलर ने उत्तर दिया, इसे विश्वास के द्वारा स्वीकार करो, क्योंकि यह सच है कि आप कुछ नहीं है। आप और मैं केवल सूखे नाले हैं, जब तक कि परमेश्वर का वचन हम में से प्रभावित न हो। मेरे मित्रों, हम देखेंगे परमेश्वर एलिय्याह का स्थानांतरण करता है। पहले राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 8 से 12 पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे साथ लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन के शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। मेरे मित्रों, इस विधवा की कहानी सुनने के बाद एलिय्याह ने उससे कहा कि वह रोटी पकाकर लाए। उसने उसे आश्वासन दिया कि वह नहीं मरेगी। पहले राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम पढ़ते हैं, एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, आटे के खाली पात्र को प्रतिदिन भरा हुआ देखकर एलिय्याह और उस विधवा के मुंह से स्तुति गान निकलता है। परमेश्वर ने आटे के खाली पात्र से उनकी सुधि ली। यहाँ एलिय्याह को एक और पाठ सीखना था। मित्रों, आपको और मुझे भी यह पाठ सीखना है, हम खाली पात्र हैं। आज समर्पण के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सुनते हैं, हमें अपनी प्रतिभाएं परमेश्वर को समर्पित करनी है। मेरे मित्रों, आपके पास और मेरे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है। गलील के काना नगर में एक विवाह उत्सव मनाया जा रहा था। वहां पर उस विवाह उत्सव में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? वधु के वस्त्र जी नहीं, खाली जल पात्र। प्रभु ने उन्हें जल से भरवा कर अतिथियों को दाखरस पिलाया। वहां विवाह उत्सव में यही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। मेरे मित्रों, हम खाली पात्रों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जीवन जल और जीवन की रोटी जब तक हम में भरे न जाए, तब तक हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इस सत्य को अंतर्ग्रहण नहीं करते। हमारी कलिसाओं में आज आत्मिक अभिनय दिखावा दिखाया जा रहा है, उनमें आत्मिक जीवन नहीं है। हमें यह स्वीकार करना है कि हम खाली पात्र हैं, हमें कुछ भी नहीं है। हम आगे देखते हैं विधवा के पुत्र को एलिय्याह द्वारा पुनर्जीवित करना। पहला राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। विधवा का पुत्र मर गया था। तब एलिय्याह ने क्या किया? पहले राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 19 से 22 पद में हम पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर तीन बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। मेरे मित्रों, एलिय्याह ने उस बालक की देह के साथ तीन बार संपर्क किया। यह पुनरुत्थान का एक महान सिद्धांत है। यह जीवन के साथ संपर्क साधना है। आज मसीह विश्वास को मसीह के संपर्क में रहना है, अन्यथा वह मृतक विश्वास है। हमें समझ लेना है कि यह धर्मशास्त्र का एक महान चमत्कार है। बालक का प्राण उसमें फिर से आ गया और वह जी उठा। मित्रों, आप और मैं मृतक हैं, हम भ्रष्ट पापी हैं, पाप और अपराध में मरे हुए हैं। यदि हमने मसीह में विश्वास किया है तो हम कहेंगे कि हम उसके साथ 2010 वर्ष पूर्व क्रूस पर मर गए हैं। वह मर गया, वह उसके साथ मर गया, वह जी उठा, हम उसके साथ भी जी उठे हैं। हम जीवित मसीह के संपर्क में हैं। यदि हम उसके साथ संपर्क नहीं बना सकते हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। प्रेरित पौलुस ने इस बात को इस प्रकार से कहा है, गलतियों की पत्री 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे प्रिय मित्रों, एलिया को यह सीखना था कि वह एक सूखा हुआ नाला है, खाली पात्र है, मृतक देह है। यह सीख लेने के पश्चात एलिया परमेश्वर का उपयोगी पात्र बन गया। मार्टिन लूथर ने कहा था कि परमेश्वर कुछ नहीं से उत्पत्ति करता है। जब तक कि मनुष्य को यह बोध ना हो जाए कि वह कुछ भी नहीं है, तब तक परमेश्वर उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। मित्रों, आज हम ऐसे अनेकों के साथ यही समस्या है। हम में बहुत सामर्थ है, हम में बहुत क्षमता है, इस कारण परमेश्वर हमें काम में नहीं ले पाता है। आज मुझे और आपको भी खाली होने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर मुझे और आपको प्रयोग में ला सके। मित्रों, यहाँ पर 17 समाप्त होता है और अब हम 18 में देखेंगे एलिया और बाल पुजारी। यह बाइबल अंश धर्म शास्त्र का सर्वाधिक दर्शनीय भाग है। एलिया बाल पुजारियों को चुनौती देता है कि स्पर्धा करके देख ले कि कौन सच्चा परमेश्वर है। 450 बाल के पुजारी एक और एलिया एक और था। ऐसा महान एलिया था जो परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आइए देखें एलिया और ओबद्याह। पहले राजाओं की पुस्तक 18 उसके 1-2 में हम पढ़ते हैं, बहुत दिनों के बाद 3rd वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेह बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को आहाब को दिखाने गया। उस समय शोमरोन में अकाल भारी था। मित्रों, अब परमेश्वर एलिया को काम में लेने के लिए तैयार था। अब एलिया साहस धर कर आगे बढ़ेगा। उसने सीख लिया है कि वह कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ही सब कुछ है। वह आहाब से भेंट करने को जाता है और वह अब तैयार है। पहले राजाओं की पुस्तक 18:3-6 में हम पढ़ते हैं, इसलिए आहाब ने ओबद्याह को जो उसके घराने का दीवान था बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। और आहाब ने ओबद्याह से कहा कि देश में जल के सब स्रोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सकें और हमारे सब पशु न मर जाएं। और उन्होंने आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चलें, एक ओर आहाब दूसरी ओर ओबद्याह चला। मेरे प्रियो, अकाल भीषण हो चुका था और मवेशियों के लिए भी चारा खत्म हो चला था। अतः आहाब और उसका कर्मचारी ओबद्याह चारागाह की खोज में निकल पड़े। आहाब एक दिशा में और ओबद्याह दूसरी दिशा में। ओबद्याह आहाब के घराने का दीवान था। वह परमेश्वर का भय मानता था। उसने परमेश्वर के 100 नबियों को इजबेल के प्रकोप से बचाकर छिपा रखा था। हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 18:7-8 में, ओबद्याह मार्ग में था कि एलिया उसको मिला, उसे चिन्ह कर अर्थात पहचान कर वह मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया मिला है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि चारागाहों की खोज करते हुए ओबद्याह की भेंट एलिया से होता है। एलिया ने उससे कहा कि राजा से कह कि एलिया यहाँ है। ओह, आज एलिया जैसे अधिकार संपन्न वाणी की कैसी आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि वह कलीसिया के उठाए जाने के बाद अंतिम दिनों में फिर आएगा और उस समय इस पृथ्वी को एक सामर्थी वाणी की आवश्यकता होगी और वह एलिया ही की हो सकती है। हम पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 9 से 13 पद में पढ़ते हैं। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति व राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को ना भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा कि वह यहाँ नहीं है, तब उसने उस राज्य व जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलियाह नहीं मिला। और जब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह कि एलियाह मिला, फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहां उठा ले जाएगा। सो जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उसे ना मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूं। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया है कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। मेरे प्रियो, ओबद्याह राजा को एलियाह का संदेश देना नहीं चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह अहाब के आने से पूर्व विलोप हो जाए। ओबद्याह अपने जीवन के प्रति भयभीत था और वह स्पष्ट कहता है कि वह एलियाह का कहा नहीं मान सकता, अन्यथा राजा उसे मरवा देगा। तब हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय उसके 14 से 16 पद में। फिर अब तू कहता है जाकर अपने स्वामी से कह कि एलियाह मिला है, तब वह मुझे घात करेगा। एलियाह ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। तब ओबद्याह अहाब से मिलने गया और उसको बता दिया, सो अहाब एलियाह से मिलने चला। मेरे मित्रों, हमने 3 बार पढ़ा है एलियाह यहाँ है। एलियाह उसे विश्वास दिलाता है कि वह निश्चय ही राजा से भेंट करेगा। इस आश्वासन पर ओबद्याह राजा से कहने गया। उसने क्या कहा? एलियाह यहाँ है और दिन आने वाला है कि फिर यही संदेश मुझे और आपको भी दिया जाएगा कि एलियाह यहाँ है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने इस बात को जान लिया है कि हम खाली हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।